अब यहाँ से अगली आयतों का थोड़ा सा इंट्रो लीजिए, फिर मैं इकट्ठी पढ़ूंगी एक मौजू की आयतें। हमने अभी तक तौहीद की बात कर ली, अल्लाह ताला ने एक अपने होने के दलाइल दिए और मुझे लगता है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ आ गई है। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा हमारे सबक का शुरू होता है, देखिएगा आयत 23 से, वइन कुंतुम फी रईबिन, और अगर हो तुम शक में। ये वही लफ्ज़ है रईब जो पीछे गुजरा, वहां ला रईब था, यहाँ फी रईब है। किस चीज पे? शक पे। मिम्मा नज़लना, उसमें से जो हमने नाजिल किया। किस बात की दलील है? उधर क्या था कुरान? ज़ालिकल किताबु ला रईबा फी, बताया था ना कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी कि देखो अभी तक जो बात पता चली कि ये कुरान हमने नाजिल किया, किस पे किया? अला अबदीना, अपने बंदे पे। यहाँ रुक जाइए लफ्ज अब्द पे। अब इस लेसन के शुरू में इतनी लंबी बात की हमने इबादत पे, अबूदियत पे, सो बुदू रबना। मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ अला अबदीना से क्या मुराद है? शाबाश, सब बोलते, सबको पता है नाम, सब बोलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो आप भी अपने पास लिखेंगे, ये क्यों नहीं कहा वइन कुंतुम फी रईबिन मिन कुरान? कुरान की बात की जा सकती थी ना, समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर तुम्हें कुरान पर शक है, मिम्मा उसमें से जो कह के नज़लना, पहला सवाल यहां पे रुकिए, ये क्यों कहा कि मिम्मा नज़लना? लफ्ज कुरान नहीं बोला गया? असल में अल्लाह को पता था कि नबी के दौर में तो लोगों ने कुरान पे एतराज किए। सूरह यूनुस पूरी की पूरी कुरान के दिफा में, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह को पता था कि आज की सदी में लोगों ने कुरान के साथ साथ हदीस को भी निशाना बनाना है। कल के लोगों का शक कुरान की तालीमात पे था, आज शक है फितना इनकारे हदीस का। तो गोया के मिम्मा नज़लना में दोनों बातें आ गई। अला अबदीना, अल्लाह के नबी को यहाँ अब्द कहा गया, ये क्यों नहीं आया कि अला रसूलीना, अपने रसूल पे हमने नाजिल किया? जी, और कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात में अल्लाह के नबी को अब्द कहा गया है। लिखिएगा, जहां अहम बात होती है ना तो वहां आपको अब्द कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा फर्क समझिए, बड़ी बारीक बात है, मुझे नहीं लगता कि कभी पहले आपसे इस तरह बात की होगी मैंने, कम से कम मैंने तो नहीं की। देखिए, इंसानियत में, आम लोगों की टर्मिनोलॉजी में गुलाम होना, अब्द होना सबसे हल्का दर्जा है ना। हम खुद कहते हैं ना, अल्लाह में गुलामी से बचाए, इज ट्रू, सब मेरे साथ है। नौकर होना, मासी होना, और उसको बहुत ज्यादा बढ़ा लीजिए तो अब्द होना, इंसानी मुकाम में किसी सोसाइटी में सबसे हल्का होता है। लेकिन अल्लाह की नजर में, अल्लाह के विजन में अब्द होना सबसे आला मुकाम है। बात समझे? किसी को अल्लाह ने अपना फेवरेट मोस्ट पर्सन कहना हो ना, माई बिलव्ड, मेरा बंदा, तो अल्लाह तला कहते हैं अब्द, अब्दुल्ला। अल्लाह और बंदे का रिश्ता अबूदियत का। अल्लाह अपने नबी को जहां किसी अहम बात की बात करें तो अब्द कहते हैं। मसलन सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, सुभान अल्लज़ी अस्रा बी अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, वहां भी क्या है? बी अब्द की बात है। फिर इसी तरह सूरह फुरकान की पहली आयत में, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही, बड़ा बबरकत है वो जिसने अपने बंदे पे फुरकान उतारा। तो यहाँ अल्लाह के नबी को अपना बंदा कहना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम है। देखने में लगता है आपको छोटा कहा जा रहा है। आप और मैं भी खुद से पूछ लें कि मैं किसकी बंदी हूँ? क्या मैं फैशन की बंदी हूँ? क्या मैं माल की बंदी हूँ? क्या मैं मुआशरे की बंदी हूँ? क्या मैं पीयर प्रेशर की बंदी हूँ? या मैं भी अल्लाह की बंदी हूँ? बहुत सारे लोगों के नाम तो अब्दुल्ला या अमतुल्ला होते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। हमारी एक बहुत ही प्यारी साथी है, तो उनको अल्लाह ने बेटा दिया बहुत साल के बाद, तो उन्होंने उसका नाम अब्दुल्ला रखा है ना। तो मैंने पूछा, सुनाओ कैसे हैं? कहती, रोते ज़्यादा हैं, हंसते कम हैं। तो मैंने कहा, मेरी जान, यही तो मोमिन होता है, ये सही अब्दुल्ला है। अब वो दुनिया का रो रहे हैं क्या? लेकिन मैंने कहा कि अल्लाह भी तो ये कहता है ना, फल जब कु कसीरन, वलयदहकु खलीलन, सूरह तौबा में आता है। तो हकीकत है कि अल्लाह के खौफ से रोना अब्दियत है। तो यहाँ अल्लाह के नबी के नाम के साथ अब्द का नाम कहकर बता दिया कि अगर तुम्हें शक है उस पे जो मैंने अपने बंदे पे नाजिल किया, फातु बि सूरतिन, तो ले आओ एक ही सूरत। ये जो लफ्ज है ना आतू आती, उर्दू में भी हम बोलते हैं आती हूँ, कोई आपको आवाज देता है इधर आओ आती हूँ, ये वही लफ्ज है। लेकिन यहाँ आतू के आगे देखिएगा सूरत से पहले बा लगा है, फातू बी है ये लफ्ज, तो ले आओ। देखिए ऐसे ही जैसे मैं ये कहती हूँ ये पेन, अब ये पेन है ना, तो मैं कहती हूँ मैं आती हूँ साथ इस पेन के आपके पास, और मैं अगर यूं कह दूं मैं लाती हूँ ये पेन, तो एक ही बात है ना। जब मैं इस पेन के साथ आपके पास आऊंगी तो मैं इसको अपने साथ ला रही हूँ ना, तो फातू में फिर लाओ का मानी आता है, लेकिन असल में आने का मानी था बा के साथ लग गया। जुमला अपने पास लिख लीजिए, आती युती के साथ जब बा लगता है तो आने की बजाय लेने का मानी है। तो ले आओ एक सूरत मिम मिसली ही, इसी जैसी, वधु शुहदाकुम, और पुकार लो अपने गवाहों को, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब यहाँ बहुत कुछ है, फिर बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात देखिए कि आप इमेजिनेशन में लाइए, कुरान पाक अल्लाह ताला के नबी पर उतर रहे और लोग जो हैं इसका मजाक उड़ा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कलाम पेश किया, अब यहाँ से आगे आप बल्कि लिख लें कि यहाँ रिसालत और कुरान का दिफा है। इस्लाम का बुनियादी पिलर नबी सल्लम की जात और आपके जरिए से जो कुरान दिया गया वो मौजूद है इधर, यहाँ अब उसका दिफा है। अरबों ने आपका बहुत मजाक उड़ाया कि ये क्या बात है, ये कैसी बात है, तो अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि तुम ले आओ फिर ऐसी कोई किताब। अब सवाल पैदा होता है क्या मक्का वाले सूरत लफ्ज से वाकिफ थे? जैसे आप किसी नॉन मुस्लिम के पास जाएं तो कहना विच सूरा, तो वो कहेगा सूरा क्या होता है, आप चैप्टर कहेंगे वो समझ जाएंगे, ऐसे कहेंगे समझ जाएंगे, लाइन सेंटेंसेस, सूरत लफ्ज नहीं समझते वो। तो मक्का वाले भी तो कसीदा बोलते थे, कभी वो नसर कहते थे, शेर कहते थे, सूरत नहीं था। यहाँ पहला सवाल आप यहाँ ये लिखिए कि फातु भी सूरत इनका लफ्ज क्यों आया है। तो थोड़ा सा सूरत को समझते हैं। लफ्ज सूरत जो है ना, ये सूर से है, सीन वाव रा इसका रूट होता है। सूर कहते हैं शहर के बाहर की दीवार। पहले दौर में बड़े बड़े शहरों के इर्द गिर्द दीवारें होती थी, कोई बीच में दो चार दरवाजे होते थे। पहली बात है कि ये दीवार बादशाह तामीर करवाता था, उसकी मलकियत होती थी, किसी मुल्क का हदूद अरबा उसी दीवार की वजह से होता था। अल्लाह ताला ने यहाँ कुफारे मक्का को चैलेंज करते हुए लफ्ज सूरत लाए क्यों, ये सवाल है असल में। अब इसको जैसे मर्जी आप लिख लें। नंबर एक, लफ्ज सूरत के साथ अल्लाह के मलक और बादशाह होने का तस्वर दिया उनको, कि कोई छोटी जात नहीं है, वो मालिक है इस कुरान का। दूसरी बात है कि वैल्यूएबल है, क्योंकि जो दीवार के अंदर चीज होती थी ना वो बड़ी अहम होती थी। तीसरी बात है अरबों के लिए गैर मारूफ लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि अंदाजा हो जाए कि ये कुरान नबी का नहीं अल्लाह का भेजा हुआ है। फिर इसी तरह आप देखिए चौथी वजह, दीवार एक दिन में नहीं बनती, बहुत टाइम लगता है। यहां बता दिया कि अल्लाह ने ये कलाम जो उतारा है ये कोई छोटी चीज नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए पांचवी चीज, दीवार नीचे से शुरू होती है तो ऊपर उठती है। अल्लाह के नबी सल्लम के जरिए से जो कुरान इनको दिया गया था ये इनके गले की फांस बन गया था। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लें, एक और आयत पढ़ के तो फिर मैं दोनों पे बात करती हूँ। फइल्लम तफलू, बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफलू फिर तुम हरगिज नहीं कर सकोगे, तो फत्तकुन्नार फिर डर जाओ उस आग से, या बच जाओ उस आग से। अल्लती वकूदुहन्नास वल हिजारा, वो जिसका ईंधन होंगे लोग और पत्थर। उइद्दत लिल काफिरीन, तैयार की गई काफिरों के लिए। इसमें दो तीन बातें हैं, पहले उसको जरा लफ्जों में देख लीजिएगा। पहली बात देखिए कि वधु शुहदाकुम, शुहदा का लफ्ज क्यों लाया? अच्छा मैं अक्सर इस लफ्ज पे कंफ्यूज होती थी कि ये कहना चाहिए था अपने दोस्तों को ले आओ गवाह। ये शुहदा शहीद किसको कहते हैं गवाह? असल में ये चैलेंज है। और यहाँ फिर थोड़ा सा अपने लिए नोट कर लीजिए, कुराने पाक में चार जगह पे अल्लाह ताला ने ये चैलेंज किया है। तीन मुकाम तरतीब के एतबार से तो भी नहीं आए, लेकिन नजूल के एतबार से गुजर चुके थे मक्की सूरतों में। ये चौथा मुकाम है। वो आयतें आएंगी, मैं लिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह। सूरत यूनुस की 38 आयत है, सूरत हूद की आयत है, इसी तरह से सूरत बनी इसराइल में भी ये चैलेंज मौजूद है। मैं नंबर इसलिए नहीं बोल रही कि आपके लिए बोझ ना हो, लिखना चाहे कोई लिख सकते हैं तो लिख ले, सूरत बनी इसराइल 88 भी है। कहीं अल्लाह ताला ने कहा कि तुम सब मिल जाओ, अला या तो भी मिसली हाजल कुरान, इस कुरान की को मिसल बना दो। फिर दूसरी जगह कहा कि फातु भी सूरत मिसली ही वदु मन इस्तता तुम मिन दूनिल्ला। फिर इसी तरह से कहीं भी अशरी सुवर कहा गया। ये तरतीब के अतबार से आखिरी चैलेंज है क्योंकि मदनी सूरत में ये क्यों किया, क्योंकि वो कहते थे कि ये कुरान क्या है। अच्छा, थोड़ी सी अब इसमें मजीद बात, क्योंकि आगे बड़ी तफसील कुरान की आ रही है। तो हर नबी को मौजजा दिया गया, हजरत मूसा का मौजजा असा यदे बैजा, हजरत ईसा के मौजजात आप पढ़ेंगे सूरत आले इमरान में, मुर्दों को जिंदा कर देना, कोढ़ी के मरीज को ठीक करना, अंधों को ठीक करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा ये कुरान था। और हर नबी के साथ अल्लाह की एक सुन्नत रही, बड़े गौर से सुनिएगा जिन्होंने भी पहले सुना हुआ वो भी। अल्लाह ने किसी कौम को उसके किसी जुर्म या किसी गुनाह पे नहीं पकड़ा। कौमें कब तबाह हुई, जब मौजजे मांगे और उनका इनकार किया। हजरत साले को याद कर लीजिए, उनकी कौम ने उठने का इनकार किया तो खत्म हो गई ना। कुफारे मक्का के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजजा था। क्यों? क्योंकि कुफारे मक्का या मक्का के जो लोग थे उनको अपने अदब पे और अपनी जुबानदानी पे बड़ा मान था, बहुत ज्यादा डिटेल से वो अपने इल्म पे मान किया करते थे। यानी उनको पता था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा अदब है, लिटरेचर है, अरब लिटरेचर जो था। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान दिया वो उसके जवाब में दिया कि चलो फिर तुम इसको समझ के दिखाओ, तुम इसको पढ़ के दिखाओ। वो नहीं कर सकते थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने इस जगह एक चैलेंज दे दिया कि तुम इस कुरान जैसी आयतें ले आओ। फिर अगली बात देखिए, फ़इल्लम तफ़लू, ये बड़ी प्यारी बात है। अरबी जुबान में काम के करने के लिए दो लफ्ज़ आते हैं आमतौर पर, अमल, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात। लिख के देखेंगे तो फिर समझ आएगा, जुबानी बातें समझ नहीं आएंगी आपको, बल्कि इस लेसन में अगली आयतों में आ भी रहा है। लेकिन यहां अब मैं बात करने लगी हूं उन लम तफलू पे। इस अंदाज पे यकीन करें कुर्बान जाए, आयत भी कुरान ही के मौजजा होने के मुतल्लिक है और इसके अल्फाज वाकई इसको मौजजा साबित कर रहे हैं। कैसे? देखिए, फा इन लम तफलू, बस अगर ना तुम कर सको। पहली बात तो देखिए कि यहां ना करने के लिए अरबी जुबान में जो लफ्ज आते हैं ना, ला, जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा लफ्ज अरबी जुबान में आता है माँ, जैसे हम उर्दू में कैसे बोलते हैं माँ को, नफी के लिए जो आता है, जैसे आप कह सकते हैं वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, कि मुझे नहीं तौफीक मिली मगर अल्लाह की वजह से। फिर इसी तरह लन, हरगिज नहीं, लम माजी में किसी चीज का ना होना, यहां दोनों लफ्ज आए लम और लन। लम क्या है? माजी में किसी काम का हरगिज ना कर सकना। जैसे इंग्लिश में देखिए, नो, कोई आपसे कहता है पानी पिएंगी, आप कहते हैं नो। कोई आपसे कहता है खाना खाएंगी, आप कहेंगी नेवर। तो नो और नेवर में फर्क है ना, वही फर्क इधर है। यहां शिद्दत की बात है, लम कह दिया गया। अच्छा, और भी बारीकी है लेकिन मैं उसमें नहीं रहती अभी, आगे चलते हैं। लफ्ज तफलू, देखिए अगर ऊपर की हिस्से को देखें तो क्या कहा था, फातु भी सूरतिन। आप अरबी टेक्स्ट नहीं देख रहे तो आप मेरे पे गुस्सा खा रहे होंगे, अभी से बता दो। अरबी पे लफ्ज डालेंगे तो दुआएं देंगे क्योंकि आपकी कुरान से दोस्ती होगी। हुक्म क्या था? फातु भी सूरतिन, ले आओ एक सूरत। तो यहां क्या आना चाहिए था? फ़इल्लम तातु, यही आना चाहिए था ना अरबी के लफ्जों को देखें, वो तो नहीं आया। चलिए तामलू का लफ्ज आ जाता, फ़इल्लम तामलू, अमल नहीं, तफलू क्यों आया है तो इसका फर्क लिखिएगा। अमल क्या होता है? सोच समझ के करना। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, अमल करना कहते हैं किसी काम को सोच के करना। फेल क्या होता है? जनरल लफ्ज है। मसा आप देखिए, आपका दिल धड़क रहा है ना इस वक्त भी, आपकी पलकें झपक रही हैं, क्या ये अमल है? नहीं, ये फेल है। बगैर सोचे समझे आपको पता भी नहीं चला, हजारों दफा आपकी पलकें झपक गई होंगी सुबह से, ठीक है। यहां तामल कहा जाता तो फिर ये मानी था कि सोच समझ के तुम ये काम कर लो फिर भी नहीं कर सकते। यहां उससे हल्का दर्जा, तफल फेल, बगैर सोचे समझे, बिल्कुल, यानी उसकी आखिरी हद बता दी कि तुम अपनी अक्ल को लगाओ ना लगाओ, जिस तरह मर्जी कर लो, लम ना कर सके, लन ना कर सकोगे, तो यानी मुराद है कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फत्तकुन नार, आग से डर जाओ जिसका ईंधन आकर लोग होंगे, वो इद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई। यहां तक अगर आप देखें ना, तो रिसालत और कुरान और ये आखिरी हिस्सा जो पढ़े ना फत्तकुन नार, इसमें ईमान बिल आखिरा शुरू हो गया, जो लेसन के अंत तक जाएगा। ईमान बिल आखिरा, सारी बात का खुलासा क्या है अभी का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके सामने कुरान की दौलत पेश की तो वो उसका मुकाबला ना कर सके, बुखला गए, परेशान हो गए। आज भी याद रखिए मेरी बात, दुनिया में इनकलाब आएगा तो कुरान की तालीम को आम करके आएगा। आज भी दुनिया को अमन, सुकून, चैन, खुशी मिलेगी तो ये कुरान की तालीम को आम करके मिलेगी। आज भी बच्चे आंखों की ठंडक बनेंगे तो कुरान को पढ़ने, पढ़ाने, समझने से बनेंगे। आज भी शौहर आपके लिए आंखों की ठंडक है, कौन सा शौहर आपके लिए आंखों की ठंडक बनेगा जो खुद भी कुरान सीखा होगा, समझा होगा और आपको भी सीखने में मददगार करेगा। अदरवाइज दुनिया के सारे मसले अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा चैलेंज करके लोगों को बता दिया कि देखो, इस कुरान जैसा कोई मुकाबला करने वाली चीज ही नहीं है। क्यों कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते? कभी आपको अल्लाह जिंदगी दे और आप हदीस पढ़ेंगी ना, तो आपको उस वक्त इस बात का अंदाजा होगा कि कुरान के बाद अगर कोई चीज हम पेश करते हैं ना, तो वो हदीस है। हदीस पढ़ते हुए देख लीजिए, जो कुरान का असलूब, जो अंदाज, जो इसकी मिसालें अल्लाह ने पेश की हैं, वो तो हदीस भी उसका मुकाबला नहीं करती। वो इंसान का कलाम है, वो बशर का कलाम है, ये बशर का कलाम नहीं है। कुफारे मक्का ने नबी सल्लम पर तीन बड़े एतराज किए थे कुरान के मामले में, जल्दी से लिख लीजिए। पहली बात, वो कहते थे हम इसको नहीं मानेंगे कि ये अल्लाह की तरफ से उतरी है, हमारा ख्याल है कि तुम खुद बैठ के इसको लिख लेते हो, बैठते रहे, गौर व फिक्र करते हो, फिर लिख के ले आते हो और फिर कहते हो अल्लाह ने दिया है। दूसरा इल्जाम क्या लगाते थे कि आपकी कोई मदद करता है, कोई लोग पीछे छुपे में एक साजिश हो रही है हमारे शहर के खिलाफ, यानी आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं और आप उनके साथ मिलके साजिशें करते हैं और आके कौम की वाहदत को तोड़ रहे हैं। ये बड़ी मजे की बात होती है। वो कहते हैं गुना पे जमा जमा तो है ना, वो तो कहते थे आप नया पैगाम ला रहे हैं। और तीसरा, नबी सल्लम पे बहुत बड़ा इल्जाम था कि आप शायर हैं, आपका कलाम दिलों पर असर करता है। अल्लाह ताला ने यहाँ इतना बड़ा चैलेंज कर दिया कि बल्कि आगे आप पढ़ेंगे जिन्नो इंस का नाम ले दिया वजह। अब मैं इधर सिर्फ हेडिंग्स बोल देती हूँ कि कुरान का कोई मुकाबला नहीं कर सका वजह। नंबर एक, कुरान के अल्फाज एक मुजजा है। अभी भी ये जो चंद लफ्ज बीच बीच में मैं आपके साथ बोलती हूँ, सुन के आपका दिल नहीं कहता कि वाकई इसमें वही लफ्ज आने चाहिए थे जो अल्लाह सुबहाना ताला ने रखे हैं। आज भी देखिए कितने 1400 साल हो गए हैं, इसके अल्फाज वैसे ही फ्रेश और न्यू है जैसे के नाजिल होते के वक्त पे थी। आप कहते हैं कि जमाने जाहिलियत में मौत के लफ्ज के लिए तकरीबन 10-12 लफ्ज थे, मौत, हलाकत, फना, हतफ, फिर इसी तरह शऊब, हमाम और बहुत सारे नाम थे। इनमें से हर लफ्ज के पीछे एक अलग मुख्तलिफ चीज थी। अल्लाह सुबहाना ताला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उनके अपने कल्चर के मुताबिक मौत का लफ्ज बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट साबित होता था। वो हैरान हो जाते थे कि ये लफ्ज कौन से हैं, यानी उनकी जुबानें गुंग हो गई थी इस कुरान के अल्फाज को देखकर। फिर इसी तरह दूसरी चीज है कुरान के जुमलों की तरकीब। रकबा यरकिबु कहते हैं एक दूसरे पे सवार होना, राकिब कहते हैं ना, ये बसों के पीछे भी लिखा होता है अरब मुल्कों में आप जाएं। तरकीब, आप खाने की तरकीब मांगती हैं, वो भी यही होती है कब क्या डालना है। कुरान की तरकीब बड़ी खूबसूरत है, सेंटेंसेस बड़े प्यारे हैं। वलकुम फिल कसासी हयात, आगे पढ़ेंगे अब सूरह बकरा में ही, लोगों तुम्हारे लिए तो कसास में भी जिंदगी है। कहते हैं इस एक जुमले के बराबर का कोई जुमला किसी अदब और कल्चर में बन ही नहीं सका, तरकीब बड़ी प्यारी है। फिर तीसरी चीज कुरान का असलूब, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टाइल। कुरान का स्टाइल बस ऐसा है कि बंदा उसके शेरों में खो जाता है। आप इसको कह लीजिए तो कुरान की अच्छी तिलावत सुन लीजिए। फिर चौथी चीज, क्यों नहीं कुरान का मुकाबला कर सके, इसकी पेशन गोइयां। बड़ी बड़ी पेशन गोइयां हुई सूरत रूम में, रोमियों के गालिब आने की बातें हुई, फिर इसी तरह से नबी सल्लम के मक्का के दौरान ही बता दिया कि इस्लाम अब आगे फैलेगा, किनारों से घट रहा है। आपकी हिजरत की बात कर दी गई कि फरद अलैक अल कुरान अल अराद इला मादिक, तो पेशन गोइयां भी कुरान की एक मौजजा है। फिर इसी तरह पांचवी चीज इनकिशाफात, डिस्कवरीज कह लीजिए। यानी कुरान ने फिरौन के डूबने की बात की और कहा तेरे बदन को हम सलामत रखेंगे, आज ये बात साबित हो गई। सूरत जारियात आयत 49 या 51 में आता है कि हर चीज को जोड़ों में पैदा किया, आज ये साबित हो गई। यानी साइंस आज बहुत सारी चीजों को ले रहे हैं। आप ये कह लीजिए जिस तरीके से इस कुरान को हम खोलेंगे ना, हमें ये एक मुजजा लगेगा। यहां तक बात हो गई कुरान और रसूल पे। अब आखिरी हिस्सा है लेसन का, मेरे साथ रहिए फिर हम आगे चलते हैं। वबशिरिल्लज़ीना आमनू, और बशारत दे दीजिए ईमान वालों को, वामिलुस्सालिहाती, और जिन्होंने अमल सालेह किए, अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, कि उनके लिए वो नहरें हैं, वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कुल्लमा, जब कभी रुज़िकू मिन्हा, वो दिए जाएंगे इसमें से, मिन समरत, इन फलों में से, रिस्कन रिस्क, कालू कहेंगे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये है वो चीज जो इससे पहले हम दिए गए, वो उतू भी ही मुतशाबिहा, और वो दिए जाएंगे इससे मिलता जुलता भी, वलहुम फीहा अज़वाज मुतहरतुन, और उनके लिए इसमें जोड़े होंगे पाकीज़ा, वहुम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अब खुशखबरियों की तरफ रुख है, या फिर एक नोट कीजिए बात। अल्लाह सुबहाना ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है, बशिर सीगा या अमर है, आप हुक्म दीजिए, किसका बशारत। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को जो पहला हुक्म दिया है वो क्या है, बशिर, अंजिर नहीं है, यानी खुशखबरियां दो। और अल्लाह के नबी ने खुद भी फरमाया कि बशिरु वला तुनफिरु, लोगों को बशारत दिया करो, नफरत ना दिलाया करो। दूसरी बात, अल्लाह जीना आमनु वामिलु सालेहात, जहां वो अमल और फेल का मतलब फर्क देख लीजिए। अमल क्या होता है, जान के इरादे से करें। अब आप और मैं ऐसे ही बेला इरादा कोई नेकियां कर रहे हैं तो वो नेकियां हमें जन्नत में नहीं लेके जाएंगी, ठीक है। अब जन्नात का लफ्ज जमा है, एक बाग होगा तो बाग होगा, और बहुत सारे बाग हो, मुराद क्या है कि जन्नत में कई किस्म की नेमतें होंगी, उनके नीचे नहरें। किन के नीचे नहरें, बागों के नीचे नहरें, या बाग पानी के किनारों पे हैं। ये जो लफ्ज है ना कुल्लमा, इसमें माँ भी जायद है, इसमें शिद्दत है। ये ऐसे कि जब जब रिस्क दिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या रहा है, जब कभी रिस्क दिया जाएगा, माँ का तर्जमा कभी है। यानी जन्नत की नेमतें बता के, पहली नेमत देखिए जन्नत की क्या है, तजरी मिन तहती अल अनहार, तो ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे आपके लिए बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन उधर जहां नाजिल हो रहा था वहां तो पानी भी नहीं था, इतने मील दूर से पानी लाते थे कुओं में से, तो उनको जब बताया गया कि जन्नत में पानी की नहर होगी तो कहते थे होए हम कब जाएंगे जन्नत में। जैसे जैसे आज आपको कोई कह दे कि जन्नत में कोक की नहर होगी, और चॉकलेट मिल्क की नहर होगी, आइसक्रीम की नहर होगी, तो आपकी राल टपकेगी ना। हमारे लिए पानी बड़ी बात नहीं, उनके लिए पानी बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात, आप बार बार नोट कर रहे हैं फलों का जिक्र बढ़ा आ रहा है, क्योंकि अरब लोग सहराई लोग थे, आपको तो सहरा में पानी की कमी होती है। लोग दो ही वजूहत से मरते थे सफर में, या पानी खत्म हो जाता था या रास्ता भूल जाते थे। अल्लाह ताला ने फलों का तस्करा करके एक तो बता दिया कि नेचुरल फूड हजम होगी, और दूसरी बात यह है कि फल एक ऐसी चीज है, आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, किसी की पकी हुई चीज आप मुंह को लगाए ना लगाएं, आप कहते नहीं मैं केला खा लूंगी, है ऐसा कि नहीं, नई चीज मुंह में नहीं डालता बंदा। फ्रूट ऐसे, और फ्रूट भी वो जो रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, पहले दे दिया, देखने में वो केला ही है लेकिन होगा बड़ा मजे का। बाज कहते हैं कि उसका टेस्ट हर दफा नया होगा। अच्छा, यहाँ दो चीजों को इकट्ठा है, एक दफा फल, वाला हम फीहा अज़वाज मुतहरा, ये लफ्ज अज़वाज है ना, ज़ौज के लफ्ज की जमा है, मुजक्कर के लिए भी है मुअन्नस के लिए भी है। अगर इकट्ठा आए ना शौहर बीवी, तो फिर ज़ौज मर्द और जौजा बीवी को कहते हैं। जिवाज कहते हैं अरबी जुबान में शादी को, सॉन्ग्स भी होते हैं वेडिंग नशीद, उसमें भी जिवाज का लफ्ज है, जौजाती मेरी बीवी, ठीक है। तो जौज का लफ्ज कैसे आता है, आप इसको थोड़ा सा सूरत मुजादिला में समझिएगा, कद समे अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलु का फी ज़ौजिहा, ठीक है? तो वहां ज़ौज शौहर के लिए आया है, तो ये शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर है। लेकिन मुतहरतुन पाकीज़ा, कैसी पाकीज़गी? वो सारी पाकीज़गियाँ जो दुनिया में अक्सर नहीं होती। कितनी अलाइशें होती हैं जो इंसान बर्दाश्त नहीं करता, कई दफ़ा जिस्मानी तहारत की वजह से, बाद दफ़ा अखलाकी गंदगियाँ होती हैं, गालियाँ बोलना, नज़रें दूसरों से लगी हुई। वहाँ की बीवियाँ, वहाँ के मर्द बहुत पाक होंगे, उनकी नज़रें किसी और तरफ नहीं होंगी। वहुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा रहने वाले। खुल्द किसको कहते हैं? जो चीज़ मिल जाए उसके बाद कभी ना जाए। क्या बताया आपको मुझे, थोड़ी सी मेहनत करो। देखिए पीछे था वो इद्दत लिल काफिरीन, जहन्नुम है काफिरों के लिए तैयार। क्या आज भी जहन्नुम है? बिल्कुल है, ये आयत उसकी दलील है। अल्लाह के नबी ने एक मौके पे सलातुल कुसूफ की एक हदीस है कहा, मुझे जन्नत और जहन्नुम दिखाई गई। इसी तरह एक मौके पे आपने फरमाया कि जन्नत और जहन्नुम में झगड़ा हुआ। इसी तरह एक दफा सही मुस्लिम की रिवायत है कि हम बैठे हुए थे तो जोर का धमाका हुआ, तो आपसे पूछा गया, तो आपने कहा कि एक पत्थर जो आज से 70 साल पहले उस जहन्नुम के मुंह से फेंका गया था, आज वो उसकी तह में गिरा। तो ये सारी दलीलें हैं, जहन्नुम है। अब यहाँ जन्नत की बात है, तो जन्नत किन के लिए? आमनु व मिलो सालेहात, क्या होता है? आज नहीं बताती, बहुत कुछ हो गया, बस इतना लिख लें कि अल्लाह और उसके रसूल की तबाह के मुताबिक दो शर्तें हैं आमल साले की। नंबर एक इखलास लिल्लाहियत, और नंबर दो उसवे हसना, यानी रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक। हर गुड डीड जो होता है ना, वो राइटियस डीड नहीं होता। ये इंशाल्लाह आपको आयते बिर में फर्क समझाऊंगी, आयत दूसरे पारे में जाके। तब तक आप वैसे भी थोड़े से बड़े हो चुके होंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो, और आपने भी चाहा तो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ जन्नत की नहरों की बात है, तो सूरत मोहम्मद में भी जन्नत की चार नहरों का जिक्र है। आप जाके आयत ढूंढ के खुद लिखेंगे। कुल्लमा रुज़िकु वाली जो बात है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। दुनिया में हमें किसी चीज का शुरू में बहुत मजा आता है, बाद में हम यूज्ड टू हो जाते हैं। पहला आइसक्रीम का कप नेमत, दूसरा रहमत, तीसरा ओके, और चौथा अजाब। कोई कहता है एक और खाओ, बच्चे को कि खानी आज तुमने सिर्फ कौन है, तो पांचवीं पे वो रोएगा कि अम्मी आज के बाद कौन नहीं खानी। वजह, क्योंकि दुनिया में खाना और भूख है। जन्नत में हम भूख के लिए नहीं खाएंगे, ये लिखें, दुनिया में भूख खत्म, खाने की लज्जत खत्म, आखिरी लुकमे पेट में बोझल लग रहे हैं। जन्नत में भूख नहीं होगी, वहाँ सिर्फ फन के लिए, जैसे आप वो चिट चैट करते रहते हैं, स्नैकिंग, मिडनाइट स्नैक्स, आफ्टर मील स्नैक्स, वहाँ आप मजे मजे से खाते रहेंगे। जिस तरह जन्नत के फल हर दफा आपको नया टेस्ट आएंगे ना, इसी तरह जन्नत की बीवियां और जन्नत के कपल, हर मुलाकात आपको पहली मुलाकात लगेगी। ये जन्नत की एक बड़ी प्यारी खूबी है, एवर न्यू। आप नया जोड़ा पहने आपको बड़ा मजा आता है, दूसरी दफा पहन ले ओके, तीसरी चौथी दफा आप कहते हैं अब पहन नहीं है तो पहन लेते हैं। इसी तरह आहिस्ता नेमते हमसे कम हो जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ बता दिया कि जन्नती अपनी बीवियों के पास आएंगे जब, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब इसमें जमा वाहिद के बहुत सारे सीगे हैं जो मुझे पता है आप थक चुके हैं, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाती, लेकिन बीवियां पाक, शौहर पाक, नजरें पाक, अखलाक पाक, जुबान पाक, नजर पाक, शक्ल भी खूबसूरत, रवैये भी खूबसूरत। इसी तरह हैज और निफास नहीं होगा वहां। थूक, बलगम, बूलो बरास, बदबू, स्वेटिंग, पसीना, ये सारी बदबूएं से पाक होंगी। ऐब नहीं होगा, नक्स नहीं होगा, निगाहें झुकी हुई होंगी, शौहरों से मोहब्बत करेंगी। औरुबन अथराबा, औरत खूबसूरत, खूबसूरत जिस्म वाली, मर्द की हम उमर, और सबसे बड़ी बात है कि वो वहां हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने, आप देखिए कि आपके मेरे सामने एक ऐसा प्यारा नक्शा खींच दिया कि जिसको खींचने के बाद, पढ़ने के बाद हम खुद अपने दिल में महसूस करते हैं कि अल्लाह हम कब जन्नत में जाएंगे। एक माँ ने कहा कि बच्चों के साथ जन्नत की बातें करती हूँ ना, तो बच्चे मुझसे कहते हैं मामा हम जन्नत में कब जाएंगे। सुन के तो यही दिल करता है ना। मा ला आइन उन रात, किसी आंख ने नहीं देखा, वला उजुन उन समयात, किसी कान ने नहीं सुना, वला खतरा ला कल्बी बशर, किसी बशर के दिल पर उसका ख्याल तक नहीं आया। लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत, कुछ काम तो करने पड़ेंगे। क्या दिल चाह रहा है इस वक्त, दुनिया में रहने को या जन्नत में जाने को? वो कौन सा दिन होगा, हम कब जाएंगे, अल्लाह ताला से हम कब मिलेंगे, वो कब तलब होगी जब यहाँ बैठ के तैयारियां की होंगी। पूरी प्लानिंग और तैयारी से जाते हैं ना, फिर मजा आता है। और अगर तैयारी और प्लानिंग ना हो तो जाकर भी आप कहते हैं हाय बगैर तैयारी के आ गई, तो मुझे आपको अच्छे अच्छे काम करने हैं।
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون